हॉल में संगीत अब और भी शोरगुल भरा हो चुका था। डांस फ्लोर पर भीड़ उमंग और मदहोशी में डूबी हुई थी, लेकिन विक्रम अब भी एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और गहरी सोच की रेखाएं साफ छलक रही थीं। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जाती थीं, जैसे किसी खास शख्स का इंतजार कर रही हों। मोनी ने ये सब बारीकी से नोटिस किया। वो एक चालाक मुस्कान के साथ विक्रम के पास आई और उसके गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोली, लगता है आपकी ड्रिंक खत्म होने वाली है विक्रम, क्यों ना मैं आपको एक और ड्रिंक दिलवा दूं? विक्रम ने अनमने अंदाज में कहा। ज़रूरत नहीं, मैं और ज़्यादा नहीं पीना है। लेकिन मोनी जैसे पहले से तैयार बैठी थी। उसने पास खड़े वेटर को इशारा किया। उसी समय मानव भी वहां आ पहुंचा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। मानव ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम भाई, आज तो जश्न की रात है, ऐसे में सिर्फ एक दो पैक से काम चलेगा। चलो आज हम सब साथ मिलकर थोड़ा खुलकर एंजॉय करते हैं। मोनी ने उसी वक्त विक्रम का गिलास उठाया और अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसमें कुछ बूंदें डाल दीं। ये सब इतनी चालाकी से हुआ कि विक्रम को कुछ पता ही न चला। फिर उसने बड़े प्यार से गिलास उसके हाथ में थमाया। अब तो आपको मना नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ से है ये ड्रिंक, मोनी ने मीठी आवाज में कहा। विक्रम ने एक पल सोचा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर झलकती थकान ने उसके इरादे को कमजोर कर दिया। उसने गिलास उठा लिया और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में असर दिखने लगा। उसकी आंखें बोझिल होने लगी, कदम थोड़े लड़खड़ाने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। मोनी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। सावधान विक्रम, आप ठीक है ना? चलिए मैं आपको थोड़ा आराम करवाने कमरे में लेकर चलती हूँ। मानव ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर विक्रम को हॉल से बाहर निकाला। आसपास के लोग समझे कि शायद उसने ज्यादा पी ली है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट के पास पहुंचकर मोनी ने मानव की ओर देखा। रूम बुक कर लिया? मानव ने सिर हिलाया। हाँ, सब इंतजाम हो गया है। रूम नंबर 307 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब इसे वहां ले जाओ और आगे का काम तुम संभालो। विक्रम आधा होश में था, आधा बेहोशी में। उसकी आंखें कभी खुलती कभी बंद होती। मोनी ने हंसकर कहा, तुम्हें तो बस यही करना आता है मानव, मेरे लिए रास्ता आसान करना। अब देखना कल का दिन किस तरह बदलता है। मानव ने एक पल उसे घूरते हुए कहा, याद रखना मोनी, हमें चाहिए कि ये आदमी पूरी तरह हमारे जाल में आ जाए। अगर ये रैना से शादी कर लेता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की महारानी बने। महारानी सिर्फ तुम बनोगी, क्योंकि तुम इस लायक हो। मोनी की आंखों में एक चमक उभरी। बस यही सुनना अच्छा लगता है। अब जाओ, बाकी का खेल मैं खेल लूंगी। मानव ने एक बार फिर विक्रम को देखा, जैसे ये तय करना चाहता हो कि उसका शिकार सही से फंस चुका है। फिर वो मुड़कर चला गया। रूम के दरवाजे पर पहुंचकर मोनी ने कार्ड स्वाइप किया और विक्रम को अंदर ले गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे खींचे हुए थे। उसने धीरे से विक्रम को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। विक्रम की सांसें भारी थीं, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्दों में ताकत नहीं थी। मोनी उसके करीब आई, उसकी टाई ढीली करने लगी और फिर कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। देखो विक्रम, मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम जितना भी मुझे दूर करो, मैं तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। वो धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। विक्रम आधी बंद आंखों से उसे देख रहा था। उसकी चेतना धुंधली हो चुकी थी। मोनी ने उसकी शर्ट उतारते हुए धीमे स्वर में कहा, कल जब आंख खोलोगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। तुम मेरे हो जाओगे, चाहे तुम्हें मानना पड़े या मजबूरी में करना पड़े। वो उसके और करीब आई, उसके चेहरे को छूने लगी। उसकी चाल, उसकी आवाज़, सब में एक अजीब सा जहर था। विक्रम ने एक क्षण के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों में अब ताकत नहीं बची थी। मोनी मुस्कराई। यही तो चाहती थी मैं, कि तुम मेरे सामने हार मानो। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। बाहर हॉल से अब भी संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन इस कमरे में सिर्फ एक साजिश की धड़कन गूंज रही थी। विक्रम धीरे धीरे बिस्तर पर ढह गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। मोनी उसके पास बैठ गई, उसकी शर्ट पूरी तरह उतार दी और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अब देखना कैसे तुम्हारा नाम मेरे नाम से जोड़ा जाएगा, और जब कल दुनिया इसे देखेगी तो कोई भी तुम्हें रैना तक पहुंचने नहीं देगा। उसकी हंसी धीमे धीमे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बाहर हॉल का गलियारा शांत था, लेकिन इस कमरे में आने वाले कल का तूफान जन्म ले चुका था। ये है मेरी दूसरी नॉवल, ये इश्क बड़ा बेदर्दी। हाँ, वो इंसान नहीं, शैतान है, लेकिन तू उसकी दवा। ऐशा, एक मासूम और होशियार कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी अब तक किताबों, सपनों और छोटी छोटी खुशियों में सिमटी थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उससे एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक टूटी हुई माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है, तू ही उसकी दवा है, और ऐशा को शादी का प्रस्ताव दिया जाता है। लेकिन ये शादी कोई प्रेम भरा बंधन नहीं, बल्कि एक ठोस समझौता है। रिश्ता उस इंसान से जिसे कॉलेज वाले प्रोफेसर कहते हैं, अर्जुन कपूर, जिसके दो रूप हैं, एक अच्छा, दूसरा क्रूर। वो एक ऐसा पुरुष है जो दिल से नहीं, जख्मों से सोचता है, जिसकी आंखों में प्यार नहीं, अतीत की राख चलती है, और जो अपनी ही परछाई से डरता है, क्योंकि उसका अंधेरा खुद उसकी रूह को खा चुका है। ऐशा इस रिश्ते को स्वीकार करती है, बट नॉट आउट ऑफ लव, बल्कि एक माँ के आंसुओं की लाचार पुकार के आगे झुककर। लेकिन क्या ये समझौता कभी एक रिश्ता बन पाएगा? क्या एक मासूम लड़की एक ऐसे मानसिक रूप से घायल इंसान को ठीक कर सकती है जो लोगों की भावनाओं से नहीं उनके खून से खेलता है? क्या प्यार वहां पनप सकता है जहां हर दीवार डर और हर खामोशी एक चीख बन चुकी है? ये एक ऐसी कहानी है जहां रिश्ते दस्तखत से शुरू होते हैं और तड़प की याद में तपकर असली इम्तिहान में बदलते हैं, जहां एक लड़की अपनी मासूमियत से एक रूह की राख को छूने की कोशिश करती है और एक आदमी अपने अंदर के दानव से लड़ते हुए इंसान बनने की चाह में तड़पता है। ये कहानी है एक समझौते की जो मोहब्बत की सबसे मुश्किल इब्तिदा बनती है, एक ऐसे रिश्ते की जहां हर दिन एक जंग है और हर जंग के बाद एक उम्मीद।